प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग दो के 10वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका कि शीर्षक है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव अर्थात एक ऐसा अनुभव या ऐसा एक्सपीरियंस जो पहले कभी न किया गया हो, अर्थात अपूर्व अनुभव से संबंधित घटनाक्रम का वर्णन इस पाठ में किया गया है। संक्षेप में देखें तो यह कथा मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया एक संस्मरण विधा का पाठ है। इसमें तोमोए में पढ़ने वाले दो बच्चों के विषय में चर्चा की गई है। यहाँ का हर एक बच्चा वहाँ एक एक पेड़ को अपनी खुद की निजी संपत्ति मानता था और किसी को किसी दूसरे के पेड़ पर जाना हो तो बड़ी शिष्टता से सम्मान से पूछना होता था कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। इसी क्रम में तोतो चान और यास्की चान नामक दो बच्चों के संघर्ष की कहानी यहाँ पर वर्णित है, जो कि तोतो चान का भी वहां पर एक पेड़ है और यास्की चान जो कि पोलियो से पीड़ित है, शारीरिक रूप से अक्षम है, इसलिए ना तो उसका कोई पेड़ है और ना वो किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता है। एक बार तोतो चान ने यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। हालांकि यास्की चान पेड़ पर चढ़ने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था, इसलिए तोतो चान के द्वारा किए गए प्रयासों जैसे कि सीढ़ी लाना और उसको खुद की सहायता के द्वारा पेड़ पर चढ़ाने के प्रयास करना, इन प्रकार के प्रयासों द्वारा, संघर्षों द्वारा दोनों पेड़ पर सफलतापूर्वक चढ़े और दोनों बहुत ही आनंदित हुए। तो इस प्रकार इन दो बच्चों के संघर्ष की कहानी इस पाठ में वर्णित है। अब हम आते हैं पाठ की मुख्य विषय वस्तु पर। मुख्य विषय वस्तु की हम चर्चा करेंगे और जहां पर भी कोई कठिन प्रसंग आएंगे उनको हम विश्लेषित करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यास्की चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, न ही यास्की चान के। अर्थात सभागार में शिविर अर्थात कैंप लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस का दिन आया जो उसका पूर्व नियोजित था, और इस दिन उसे यास्की चान से मिलना था। इस भेद का पता मतलब यह बात न तो यास्की चान के माता पिता को पता थी और न ही तोतो चान के। उसने यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था, न्योता अर्थात निमंत्रण दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। यहाँ पर बता रहे हैं कि वहां पे रहने वाले बच्चों ने एक एक पेड़ को अपनी निजी संपत्ति जैसे बना रखा था उस पे चढ़ने के लिए और खेलने के लिए, जिसमें तोतो चान का भी एक पेड़ था जो मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। काफी बड़ा पेड़ था, चढ़ने पे पैर फिसलते थे, लेकिन अगर आराम से चढ़ जाओ तो 5-6 फुट की ऊंचाई पर द्विशाखा अर्थात जहां से पेड़ की 2 शाखाएं निकली हो वहां पर बैठने की जगह या आश्रय की जगह बन जाती है। तो वहां पर बता रहे हैं कि बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह बैठने के लिए बहुत किसी झूले सी आरामदेह जगह थी वह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बता रहे कि तोतो चान अक्सर पेड़ पर चढ़ी मिलती, या तो वह वहां से बैठकर आकाश को देखती या तो सड़क पर नीचे चलने वाले लोगों को। बच्चे अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं आपके अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। मतलब कह रहे हैं कि बच्चे जो थे वे अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, इसलिए अगर किसी दूसरे के पेड़ पर जाना हो तो पहले उससे आज्ञा मांगनी पड़ती थी और बड़ी शिष्टता से कि माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं। इस प्रकार से यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोत्तो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। यहाँ पर बता रहे हैं कि यासुकी चान जो तोत्तो चान के साथ में पेड़ पर चढ़ने की योजना बना रहे थे वो लोग, तो यासुकी चान हालांकि जिसे पोलियो था, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था पेड़ पर चढ़ने में, इसलिए उसका कोई पेड़ नहीं था और ना ही वह किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। हालांकि तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था, और यह बात दोनों के ही माता पिता को भी नहीं पता थी क्योंकि अगर वो लोग जानते तो वो लोग उन्हें डांटते क्योंकि इस प्रकार से चोट चपेट लगने का डर बना रहता। घर से निकलते समय तोत्तो चान ने अपनी माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर जा रही है, मतलब उसने झूठ बोला। चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका, वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तोत्तो चान कुछ झूठ बोल रही थी इसलिए राकी जो था उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया, और जाने से पहले तोत्तो चान ने राकी को सच बता दिया कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। जब तोत्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोत्तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। यासुकी चान जब स्कूल में पहुंची तो हालांकि गर्मियों की छुट्टी के कारण ज्यादातर सूना पड़ा था सब कुछ, और यहाँ पर बता रहे हैं कि यासुकी चान तोत्तो चान से एक वर्ष ही बड़ा था, लेकिन फिर भी तोत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। और जैसे ही यासुकी चान ने तोत्तो चान को आते देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोत्तो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी न पता था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। मतलब दोनों एक दूसरे से मिले और बहुत ही उत्साहित थे क्योंकि वे पेड़ पर चढ़ने वाले थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को देखकर मन प्रसन्न होकर हंसने लगे। तोत्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। मतलब बता रहे हैं कि यासुकी चान को तोत्तो चान जब अपनी पेड़ की तरफ लेके गई थी तो उसने पूर्व में अपने तय किए हुए निर्णय के अनुसार वह चौकीदार के छप्पर की ओर भागी और वहां से वह एक सीढ़ी उठाकर लाई और उस सीढ़ी को पेड़ के तने के सहारे इस प्रकार से लगाया कि वह द्विशाखा, मतलब पहले ये बताया गया आपको कि पेड़ पर जहां से दो शाखाएं स्टार्ट हो जाती हैं वहां पर बैठने वगैरह की जगह बन जाती है, वहां तक पहुंच जाए, इस प्रकार से सीढ़ी को लगाया। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। मतलब बता रहे हैं कि तोत्तो चान ने ऊपर जाके सीढ़ी पकड़ ली और यासुकी चांद से कहा, अब तुम चढ़ने की कोशिश करो। लेकिन यासुकी चांद तो शारीरिक रूप से अक्षम था, उसके हाथ पैर इतने ज्यादा कमजोर थे कि वह सीढ़ी पर भी अकेले चढ़ने में सक्षम नहीं था। उसे किसी के सहारे की जरूरत थी। इस पर तोत्तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, पर तोत्तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। मतलब बता रहे हैं कि तोतो चांद नीचे उतर के आई उसको सहायता करने के लिए, लेकिन वह खुद भी बहुत उसकी छोटी हाइट थी और वह इसलिए इससे ज़्यादा सहायता क्या कर सकती थी। यास्की चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी है। अब क्या करें, वह यास्की चांद उसके पेड़ पर चढ़े यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। मतलब यास्की चांद ने प्रयास किया फिर हताशा से अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया क्योंकि वह चढ़ने में असमर्थ था। तोतो चांद ने सोचा कि चढ़ना इतना आसान होगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यह काम उतना आसान नहीं है जितना वह पहले से सोच रही थी। अब क्या करें, वह ऐसा सोचती है। यास्की चांद उसके पेड़ पर चढ़े यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। वह चाहती थी कि यास्की चांद उसके पेड़ पर चढ़े क्योंकि उसने उसको निमंत्रित किया था। यास्की चांद भी चढ़ने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन शारीरिक असमर्थता थी इसलिए वह चढ़ नहीं पा रहा था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो एक बात सूझी, मतलब बता रहे हैं कि यास्की चांद हताशा से निराश हो गया था, हताश हो गया था, इस वजह से तोतो चांद उसके सामने गई और उसे हंसा कर फिर से उसे खुश किया। उसने कहा, ठहरो एक बात सूझी। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। उसके मन में एक विचार आया और इस प्रकार वह फिर से चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और वहां पे हर एक चीज को उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। मतलब तीन पैर वाली एक सीढ़ी उसे मिली जिसको पकड़ने की भी कोई जरूरत नहीं थी, बिना सपोर्ट के भी उस पर चढ़ा जा सकता था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी दुशाखा तक पहुंच रही थी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। मतलब उसने यास्की चांद से कहा कि यह डगमगाएगी नहीं, मतलब हिले डुलेगी नहीं और डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब आराम से चढ़ाओ, क्योंकि वह सीढ़ी भी दुशाखा तक पहुंच रही थी आराम से। यास्की चांद ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चांद की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यास्की चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। मतलब तोतो चांद के कहने पर यास्की चांद ने घबराकर और उस सीढ़ी को देखकर तोतो चांद की तरफ देखा और दोनों को पसीना आ रहा था, फिर भी उसने पेड़ की ओर देखा और निश्चय करके पांव उठाकर सीढ़ी पर रखा, तो उन दोनों को बिल्कुल भी समय का पता नहीं चला कि यास्की चांद पेड़ पर कब पहुंच गया, कब चढ़ गया, मतलब उस सीढ़ी के सहारे वह पेड़ पर चढ़ गया। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था पर दोनों का ध्यान यास्की चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। सूरज की गर्मी लग रही थी दोनों को, धूप लग रही थी, लेकिन फिर भी दोनों का ध्यान जो था वह ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। तोतो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यास्की चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे, मतलब बता रहे हैं यहाँ पर कि तोतो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। मतलब वह यास्की चांद को ऊपर चढ़ने में मदद कर रही थी और पीछे से भी उसको सपोर्ट कर रही थी, और यास्की चांद अपनी पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था, मतलब पूरी शक्ति के साथ ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। आखिरकार वह ऊपर पहुंच गया, ऊपर चढ़ गया। हुर्रे करके उन्होंने खुशी मनाई, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दुशाखा पर पहुंच गई, पर यास्की चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। मतलब तोतो चांद तो दुशाखा तक पहुंच गई सीढ़ी से, लेकिन यास्की चांद पहुंचने में अभी भी उसे मुश्किल हो रही थी, इसलिए उन्हें अपनी सारी की गई मेहनत बेकार लगने लगी। यास्की चांद सीढ़ी थामे तोतो चांद की ओर ताकने लगा। तोतो चांद की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यास्की चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यास्की चांद भी रो पड़ेगा। उसने यास्की चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। मतलब यास्की चांद जब नहीं चढ़ पाया तो फिर से वह निराश हुआ और तोतो चांद की यह स्थिति देखकर रुलाई छूटने वाली, मतलब वह रोने जैसा होने लगी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि उसको देखकर यास्की चान भी रो पड़ता, इसलिए वह रोई नहीं। और उसने क्या किया, उसका पोलियो वाला हाथ मतलब जो था वह उसने पकड़कर अपने हाथ में थाम लिया और ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी, मतलब उसका पोलियो से ग्रसित जो हाथ था उसके बारे में बता रहे हैं कि उसकी उंगलियां भी बड़ी थीं और हाथ भी बड़ा था। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यास्की चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। मतलब बता रहे हैं तोतो चान ने यास्की चान से कहा कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर ऊपर खींचने की कोशिश करती हूँ, और यह स्थिति अगर कोई दूसरा देखता उसको खींचते हुए तो जरूर उसमें चीख उठता, क्योंकि वह जरूर समझता कि ये दोनों लोग बहुत बड़ा कोई जोखिम उठा रहे हैं, कोई खतरा उठा रहे हैं। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यास्की चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यास्की चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास्की चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे, अर्थात बता रहे हैं कि तोतो चान के काफी प्रयास करने के बाद, काफी संघर्ष करने के बाद यास्की चान को धीरे धीरे खींचते खींचते उसने द्विशाखा तक पहुंचा दिया, और कुछ देर बाद दोनों पेड़ की द्विशाखा पर आमने सामने पहुंच गए थे, अर्थात आमने सामने बैठे थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। जब यास्की चान ऊपर पहुंच गया तो पसीने से तरबतर तोतो चान ने सम्मान से उससे कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यास्की चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मतलब यास्की चान जब पेड़ पर पहुंच गया, द्विशाखा तक पहुंच गया और डाल के सहारे खड़ा था, तो कुछ झिझकता अर्थात संकोच करता हुआ वह मुस्कुराया और उसने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मतलब जैसा कि आपको पूर्व में ही बताया गया कि किसी दूसरे के पेड़ पर जाने से पहले हमें शिष्टता से पूछना पड़ता था कि माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो इसी प्रकार यास्की चान ने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यास्की चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यास्की चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहां एक चीज होती है टेलीविजन, यास्की चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। मतलब यास्की चान और तोतो चान दोनों पेड़ पर बैठ के आराम से आपस में बातें करने लगे। फिर यास्की चांद बताता है कि मेरी बहन एक अमेरिका में है, वह बताती है कि एक वस्तु होती है, एक चीज होती है टेलीविजन नाम की, और वह बड़े उमंग के साथ बड़ी खुशी के साथ बातें बता रहा था। और वह बताता है कि उसकी बहन कहती है कि जब जापान में वह आ जाएगी, वस्तु वह चीज आ जाएगी, तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चांद उस समय यह तो न समझ पाई कि यास्की चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। मतलब तोतो चांद समझ नहीं पा रहे थे कि डिब्बे जैसी चीज यास्की चांद के लिए कैसे, जो खुद भी नहीं चल सकता है, कहीं दूर तक जा भी नहीं सकता, तो कैसे संभव होगा इन सब चीजों को देखना। वह तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। मतलब वह समझ नहीं पा रही थी कि सूमो पहलवान इतने बड़े होते हैं और एक छोटे से डिब्बे में, टीवी जैसे डिब्बे में कैसे वह समा जाएंगे। मतलब उसे टेक्नोलॉजी की उतनी ज्यादा समझ उस समय नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे बात लुभावनी लगी, मतलब अच्छी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था, पहले पहल यास्की चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। मतलब उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था, पहली बार तोतो चान को यास्की चान ने ही उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, अर्थात बता रहे हैं कि पेड़ मानो गीत गा रहे थे। दोनों इतना प्रसन्न थे, खुश थे कि पेड़ पर चढ़ के दोनों बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे और हालांकि दोनों मित्र थे तो दोनों एक दूसरे से प्रेम से बातें कर रहे थे और यास्की चान के लिए यह पेड़ पर चढ़ने का पहला और अंतिम मौका था, इसलिए वह और भी उत्साहित था और भी प्रसन्न था। इस प्रकार आपने देखा कि इस पाठ में तोत्तो चान और यास्की चान इन दोनों मित्रों के संघर्ष की कहानी है। एक तोत्तो चान नाम के मित्र ने यास्की चान नाम के अपने मित्र को किस संघर्ष के द्वारा या किस संघर्ष के साथ किस प्रकार से उस पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास किया, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक पेड़ पर चढ़ाना या पेड़ पर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसकी इच्छा, हार्दिक इच्छा थी कि यास्की चान मेरे पेड़ पर चढ़े। और यास्की चान जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था, फिर भी दोनों के प्रयास से, दोनों के मिले हुए प्रयास से वह जो कार्य था वह सफल हो पाया और यास्की चान भी पेड़ पर चढ़ सका और उसने पेड़ के आनंद को भी समझा कि ऊपर चढ़कर ये लोग क्या आनंद उठाते हैं, पेड़ पर चढ़ के जो दुनिया दिखती है उस दुनिया का भी आनंद उसने लिया। इस पाठ के लेखक हैं तेत्सुको कुरियानागी, जिसका अनुवाद किया गया पूर्वा यागी कुशवाहा के द्वारा। आप इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ें, समझें और इसके बाद इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं वे भी इसी भाग में दिए गए हैं, उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।